दिन भर तारीख 16 मई दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की जनता ने डाले राज्य की नई सरकार को चुनने के लिए वोट।
हम लोग इस धूप पे भी निकल गए हैं, लेकिन सब कुछ विकास के लिए हम लोग आया है। इतना गंदा फैला हुआ है, ये सब भी हटाना पड़ता है।
भारत प्रशासित कश्मीर में धारा 370 से छेड़छाड़, पूर्व सैनिकों और हिंदुओं की अलग कॉलोनी बसाने जैसे मुद्दों पर बहस है जारी।
बीजेपी को खुश रखने के लिए और अपनी कुर्सी को कामयाब करने के लिए महबूबा मुफ्ती हर वो कदम उठाएगी जो बीजेपी को खुश रखेगी।
चीन में सांस्कृतिक क्रांति के 50 साल पूरे हुए, कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में शाम 5 बजे तक 69.19% मतदान की खबर है, जबकि केरल में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। वहीं पुदुचेरी में लगभग 80% मतदान होने की खबरें हैं। वोटों की गिनती गुरुवार को होगी, उसी दिन असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि सरकार सूखे से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने के बारे में सोच रही है। बीबीसी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी बड़ी नदियों के पानी को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा और ये सरकार की अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत के एक बड़े हिस्से में लगभग 33 करोड़ लोग सूखे के हालात झेल रहे हैं। उमा भारती ने कहा, निश्चित तौर पर ये हमारा मुख्य एजेंडा है। हमें इस मुद्दे पर लोगों का समर्थन मिला है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में था, हमारे घोषणा पत्र में था, ये हमारा चुनावी वादा था। ये सरकार का बुनियादी एजेंडा है और मैं इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये थे उमा भारती के शब्द। वहीं कई पर्यावरणविद नदियों को जोड़ने का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि इससे कई पारिस्थितिकी संकट पैदा होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नदियों को जोड़ने की योजना को हरी झंडी दे चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत की सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण से क्षेत्र में शक्ति का संतुलन खराब होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी अपनी रक्षा क्षमताओं को इसी हिसाब से उन्नत बनाएगा। भारत ने कल सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उड़ीसा के तट पर परखी गई ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की क्षमता रखती है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी लीबिया में जारी संकट पर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। ये बैठक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रही है और इसका मकसद लीबिया में स्थिरता लाना और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली वहां राष्ट्रीय एकता की सरकार को मजबूत बनाना है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आज अमरीका, सोमालिया और अफ्रीकी संघ के साझा बलों ने इस्लामी चरमपंथियों के ठिकानों पर हमला किया। शहर के बेरीरे इलाके के निवासियों का कहना है कि उन्होंने जमीन पर अमरीकी सैनिकों को देखा जो अमरीका द्वारा प्रशिक्षित सोमाली कमांडोज की मदद कर रहे थे। और एशिया महाद्वीप में सक्रिय 8 सस्ती एयरलाइंसों ने एक समूह बनाया है, जिसके बाद पहली बार यात्री इस पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए उनकी साझा सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की जनता ने विधानसभा के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम पूरा कर दिया। तो कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से 232 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौरान अनेक जगहों पर मतदाताओं को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक राज्य में 69.19% मतदान हुआ।
As far as the turnout of Tamil Nadu is concerned, as per our information, the polling percentage on 5 p.m. it is 69.5%.
चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कह रहे थे कि अब तक यानी कि शाम के 5 बजे तक 69.19% मतदान हुआ है, और अगर पिछले लोकसभा चुनावों में मतदान की गणना से हम इसकी तुलना करें तो पिछली बार 78.12% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने 2 विधानसभा सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया। अब वहां 23 मई को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 25 मई को होगी, लेकिन राज्य में मतगणना 19 मई को होनी है। यहां पर मुख्य मुकाबला जयललिता की सत्तारूढ़ और करुणानिधि की डीएमके के बीच माना जा रहा है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव आज राजधानी चेन्नई के इलाकों में मतदान को देखते रहे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
आज चेन्नई की सुबह कुछ खास थी। देर रात तक बारिश हुई थी, इसलिए हवा में नमी के साथ साथ ठंड भी थी, लेकिन मौसम के इस ठंडे मिजाज से कहीं अलग थे मतदाताओं के तेवर। 7 बजे के बाद से ही जो कतारें लगनी शुरू हुई तो समझ में आने लगा कि पिछली बार की तरह ही आज भी रिकॉर्ड मतदान होगा, क्योंकि 2011 के चुनाव में राज्य में 78% मतदान जो हुआ था। तैनमपेट इलाके में पत्नी के साथ पहुंचे नागराज को सुनिए।
सिटी डेवलपमेंट आगनो
अदर रेशन कडे कोना मूनांते नालांते दे पर्प कडेदनरा
हम लोग इस धूप पे भी निकल गए हैं, लेकिन सब कुछ विकास के लिए हम लोग आया है। दूसरा तरफ यही है, देखना है, इतना गंदा फैला हुआ है, ये सब भी हटाना पड़ता है। और जहाँ भी रेशन शॉप में जाएगा तब जाना है तो जो दुकान में जो मिलना है वो सही टाइम पे ढंग से मिलना है, ये सब लोगों को नहीं मिल रहा है, इसी कारण से हम लोग वोट देंगे।
चेन्नई में कम से कम मुझे तो युवाओं में वोट डालने को लेकर बहुत उत्साह दिखा। ट्रिप्लिकेन मोहल्ले के एक बूथ पर पिता माता और पत्नी को लेकर पहुंचे कार्तिक ने अपने आने की वजह भी बताई।
I see that other states have better infrastructure and better budget, but still we have to like.
कार्तिक बता रहे थे कि दूसरे राज्यों में हालात बेहतर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति तमिलनाडु से भी अच्छी है, जबकि तमिलनाडु को सूखे से भी जूझना पड़ रहा है, इसलिए कुछ बदलाव तो चाहिए। शहर के इलाकों का दौरा करते वक्त कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी मिले जहां पर सुबह तो सन्नाटा था, लेकिन 3 बजते ही पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इसी में से एक बूथ सैदापेट के बाहर सलीहा से बात हुई।
I want city to develop, so I'll vote for a person whom I feel is going to promising like.
सलीहा कह रही थी कि वे अपने या परिवार नहीं बल्कि शहर के लिए वोट देने आई हैं और उसी कैंडिडेट को देंगी जो वाकई शहर की बेहतरी के लिए काम करेगा। वैसे तमिलनाडु में सत्ताधारी AIDMK की जयललिता सरकार को चुनौती देने वालों में प्रमुख विपक्षी दल DMK और कांग्रेस गठबंधन तो है ही, साथ ही DMDK, PMK और BJP भी मैदान में है। तो आज के इस भारी कहे जाने वाले मतदान का क्या अर्थ निकाला जाए? वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश पेरुमल।
तमिलनाडु में जो है इलेक्शन का जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो भी प्रमोशन किया है वोट डालने के लिए, इसकी वजह से ज़्यादा असर हो रहा है उसका। और ऐसा भी है ज़्यादातर वोटर यहाँ परसेंटेज देखा जाए तो नया वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स ज़्यादा है। और ऐसा भी है कि इस बार जो AIDMK गवर्नमेंट जयललिता के खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, क्योंकि अभी सबको लगता है कि अब वो जीत सकते हैं। इसकी वजह से क्या है, सबने पुश किया कि अपने लोग आके वोट डालें।
मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन 19 को नतीजे आने तक सवाल एक ही है, तमिलनाडु में इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नए सिरे से बनेगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC चेन्नई।
तमिलनाडु से आपको केरल ले चलते हैं। केरल की 140 सीटों पर मतदाताओं ने वोट डाले। यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सत्ताधारी UDF और वाम पार्टियों के गठबंधन LDF के बीच में मुकाबला है, लेकिन BJP ने भी इस चुनाव में अपना पूरा जोर लगा दिया है। कुल 1203 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें कि 109 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि केरल में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। BBC संवाददाता दिव्य आर्य केरल चुनावों को कवर करने के सिलसिले में आज एर्नाकुलम में थी, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
आखिरकार आज 16 तारीख है और केरल अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर बहुत तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, जबकि बारिश हो रही है। हम एर्नाकुलम ज़िले में हैं और सुबह के 7 बजे यहाँ वोटिंग शुरू होनी थी, और जो सबसे पहले जिन्होंने वोट डाला रागिनी जी, उनसे जानते हैं कि इतनी बारिश में इतनी सुबह आकर वो क्या उम्मीद करती हैं इस चुनाव से।
मैम अपना स्टेट का स्टेबल एंड पीसफुल एटमोसफियर चाहता है, इसलिए इंश्योर करने के लिए मैं माता जी को साथ लेकर आया।
रागिनी के जैसा उत्साह केरल के मतदाताओं में आम है। राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने के बाद ये साफ हो जाता है कि यहाँ के मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं और अपने मतदान की जिम्मेदारी के प्रति सच्चे भी। मतदाता केंद्र में जिस किसी से सवाल पूछें एक सटीक जवाब में वो बता देते हैं कि उनके लिए चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या रहा है।
जो सुरक्षा जो है वो भी कम है औरतों के लिए। अब आप जानते कितना केसेस हो रहा है यहाँ पे, अब ये लोग आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, अगर एक चेंज है देखते क्या होगा आगे, शायद कुछ हो जाए।
मैं सोच रहा हूँ कि 50-60% इन द एज ग्रुप ऑफ 18-35 अगर वो केरला में अपना चेंज जाना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाएगा और वोट भी करेगा।
आम मतदाता ही नहीं, अभिनेता मामुट्टी जैसे फिल्मी सितारे और मुख्यमंत्री उमन चांडी और वाम नेता पिनाराई विजयन समेत चुनाव के दिग्गज प्रत्याशी भी सुबह सवेरे ही मतदान केंद्रों में लाइन लगाए दिख रहे थे। थ्रिकाकरा के बूथ पर मुझे मिले भारतीय जनता पार्टी के तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर श्री संत।
कोशिश ये है कि एक सीट नहीं जीतना है, हमें बहुत कुछ करना है। कोशिश ये है कि जितना वोट्स जीत सकते हैं और इतना कैंडिडेट जीते और बीजेपी का गवर्नमेंट आज नहीं तो कल आना ही आना है।
आपकी फिल्म भी इसी महीने रिलीज हो रही है, आपकी प्राथमिकता आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी आने वाले दिनों?
मेरे प्रायोरिटी सिर्फ पॉलिटिक्स रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना, उनके लिए काम करना और भगवान कृपा है मुझे एक अच्छा मौका मिला इस बार लोगों के साथ मिलना जुलना और उनकी प्रॉब्लम को समझना।
आपकी पर्सनल पारी T20 जैसी होगी या टेस्ट क्रिकेट जैसी होगी या वनडे की जैसी होगी, पॉलिटिक्स में कितनी लंबी पारी
देखेंगे? जय माता दी, ऐसा हो जाए कि जैसे सचिन पाजी ने 20-25 साल खेले क्रिकेट, उससे भी बेहतर खेल पाएंगे तो भगवान कृपा होगा, लोगों का भी कृपा।
विश्लेषकों के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर श्री संत को टिकट देने के पीछे बीजेपी के युवा वोटरों को लुभाने की मंशा है। बीजेपी ने केरल में कभी कोई लोकसभा या विधानसभा सीट नहीं जीती है, पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पिछड़ी जाति के संगठन SNDP और भारत धर्म जनसेना के साथ गठबंधन किया गया है ताकि हिंदू वोट को बटोरा जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री उमन चांडी के मुताबिक केरल में बीजेपी के एक भी सीट जीतने की संभावना नहीं है। कोटायम में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चांडी कह रहे थे कि राज्य में ऐसा माहौल ही नहीं है कि बीजेपी को जीत हासिल हो। चांडी का दावा है कि इस बार उनका गठबंधन वापस सत्ता में आएगा। हालांकि CPIM के 92 साल के वाम नेता VS अच्युतानंदन के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार के मामलों के आरोपों के चलते जनता UDF को अपना वोट नहीं देगी। अब आखिरी फैसला तो मतों की पेटियां खुलने पर 19 मई को ही पता चलेगा। दिव्या आर, BBC केरल।
केरल के बाद रुख पुडुचेरी का करते हैं और पुडुचेरी में भारी तादाद में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। अब तक इस तरह की खबरें हैं कि लगभग 81% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों पर कुल 344 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। करीब 9.5 लाख मतदाताओं के लिए 930 मतदान केंद्र बनाए गए थे और पुडुचेरी में 1:30 बजे तक लगभग 53% लोगों ने मतदान किया। और सुबह का जो मौसम था अचानक बदल गया, सुबह 9:30 बजे के करीब बारिश शुरू हो गई, लेकिन इससे मतदाताओं का उत्साह थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद मतदान वहां पर बढ़ने लगा।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
इसके अलावा आज ही मेघालय में तुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 4 राज्यों में 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। झारखंड में गोड्डा और पनकी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। तेलंगाना के खम्मम जिले के पालेर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश के बिलारी और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान हुआ। तो ये थी मतदान से जुड़ी खबरें। रुख जम्मू कश्मीर का करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में स्थानीय कानून के साथ छेड़छाड़ की खबरों से तनाव का माहौल है। घाटी में भारत सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया का राष्ट्रीयकरण करने, देश के पूर्व सैनिकों को और घाटी छोड़ चुके हिंदुओं को अलग कॉलोनी में बसाने जैसे मुद्दों पर राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभी तक इस तरह की कोई भी नीति पारित नहीं हुई है। उधर अलगाववादियों का कहना है कि बीजेपी के नेताओं की तमाम घोषणाओं से हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। BBC संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
ये विवाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद तरुण विजय के उस पत्र से खड़ा हो गया है जो उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा है कि कश्मीर में विदेश भर के पूर्व सैनिकों और दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए अलग कॉलोनियां स्थापित करने से कश्मीर में बीजेपी की विचारधारा मजबूत हो जाएगी। इनका कहना था कि महबूबा मुफ्ती इनकी मित्र हैं और उन्होंने इस बारे में आश्वासन भी दिया है। इसके साथ सरकार की वो नई नीति भी विवादित बन गई है जिसके तहत भारतीय उद्योगपतियों को 100 साल के लिए यहां जमीन लीज पर दी जाएगी। इन समाचारों के प्रकटीकरण से कश्मीर के आम लोगों में गुस्सा पाया जाता है।
बीजेपी को खुश रखने के लिए और अपनी कुर्सी को कामयाब करने के लिए महबूबा मुफ्ती हर वो कदम उठाएगी जो बीजेपी को खुश रखेगी। अगर कश्मीरी पंडित पार्ट एंड पार्सल कश्मीरी सोसाइटी का है तो टाउनशिप बनाने की क्या जरूरत है?
ये इसराइली पॉलिसी हमारे साथ हिंदुस्तान खेल रहा है यहाँ पे। हम ये कतई कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पे सैनिक कॉलोनी जो पंडित टाउनशिप है। हाँ, अगर पंडित आना चाहते हैं, अगर उनके घर है यहाँ पे तो वो रहे उनमें। उनको क्या कोई सताता है? उनको क्या कोई परेशानी है? यहाँ 10,000 पंडित नहीं रहते हैं।
इससे यहाँ पे और भी हालात बिगड़ सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे अभी मसला अफसफा का है। ऑलरेडी फोर्स के पास बहुत सारे पावर्स है जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रही है।
गौरतलब है भारतीय संविधान की धारा 370 के अनुसार कश्मीर को खसूसी संवैधानिक स्थिति हासिल है। इस धारा के अनुसार रक्षा, दूरसंचार और विदेश नीति के अलावा सभी विभागों में राज्य को स्वायत्तता हासिल है। राजनीतिक वर्गों का कहना है कि पिछले कई वर्षों के दौरान कश्मीर की संवैधानिक पोजीशन को कमजोर किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की भर्ती की प्रक्रिया का भी राष्ट्रीयकरण किया है। अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सैनिक कॉलोनी या राष्ट्रीयकरण की नीति की कड़ी आलोचना की है। तहां पार्टी के प्रवक्ता जुनैद अजीम मत्तू कहते हैं कि राज्य के स्थानीय सैनिकों के लिए सैनिक कॉलोनी बनाई जाए तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं।
जब जब ऐसा कुछ हुआ है हिस्ट्री हैज टॉट अस कि यहाँ पे हालात खराब हुए हैं और उम्मीद तो यही है कि पीडीपी भी ये हिस्ट्री जानती है कि ऐसा ना हो। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, सैनिक कॉलोनी हो, नीट हो या बाकी मसले हो, यहाँ के झंडे पे जो एक असॉल्ट किया गया, सर्कुलर को विड्रॉ किया गया या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस पे जो बातें हो रही है या जो बीजेपी के बयान 370 पे हैं, ये बहुत ही नेगेटिव सिग्नल्स हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस भी बहुत ही खराब होंगी।
अलगाववादियों ने सरकार को चुनौती दी है कि पूर्व सैनिकों और भारतीय नागरिकों को यहां बसाने की प्रक्रिया और ऐसी दूसरी नीतियों के विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक ने इस बारे में बताया,
ये हमने पहले ही कहा ये हम होने नहीं देंगे और हमारा आज भी वही मौकफ है कि हम ये चीज कभी भी नहीं होने देंगे। चाहे सैनिक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो या ये हिंदुस्तान का बाशिंदा हो, ये कॉलोनी हमें किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है।
इस बार धारा 370 के विरुद्ध हो रही कथित साजिशों के बाद जनता की प्रक्रिया को भांपते हुए सरकार ने घोषणा की है कि उद्योग की पॉलिसी की दोबारा समीक्षा की जाएगी। शिक्षा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नईम अख्तर इस पॉलिसी को यूं स्पष्ट करते हैं,
पूरी पॉलिसी को रिवाइव करेंगे और इट विल गो टू द कैबिनेट और इसमें जहां भी जरूरत पड़े, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो नॉट दिस अलोन, हमें लगता है कि कुछ और एरियाज भी इसमें आने चाहिए।
गौरतलब है कश्मीर के लोग अपनी पहचान और धरती की मिल्कियत के बारे में बहुत भावुक हैं। 2008 में भी जब सरकार ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को 800 कनाल जमीन खुफिया तौर पर अलॉट की तो कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चला जिसके दौरान पुलिस की कार्रवाई में 60 से अधिक छात्र मारे गए और सैकड़ों जख्मी हो गए। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
50 साल पहले आज ही के दिन चीन में साम्यवादी नेता माओ ज़ेदुंग ने सांस्कृतिक क्रांति का आगाज किया था। सांस्कृतिक क्रांति का ये दौर बेहद उथल पुथल भरा था। माओ की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 1981 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे भारी भूल करार दिया। इसे लेकर वहां कोई आधिकारिक जश्न नहीं मनाया जा रहा। यही नहीं कि चीन की सरकारी मीडिया ने भी एक तरह से चुप्पी साध रखी है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा अमर शर्मा से।
माओ ज़ेदुंग चीन के साम्यवादी दल के नेता थे जिनके नेतृत्व में चीन में 1966 में जो क्रांति हुई उसे सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया गया। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर उन्होंने जिस राजनीतिक सिद्धांत को अमल में लाया उसे माओवाद कहा जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति की आड़ में उन लोगों को मौत दी गई जो पूंजीवादी विचारधारा के थे। माओ संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। टाइम पत्रिका ने 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में माओ ज़ेदुंग को भी शामिल किया था। वर्तमान में कई लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, लेकिन चीन में वे एक महान क्रांतिकारी, राजनैतिक रणनीतिकार और दूरदर्शी प्रशासक माने जाते हैं। चीनियों के मुताबिक माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रम के जरिए आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास की मदद से चीन को विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में ला खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन इसके उलट 1957 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति को लागू कर वे चीन को कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते थे। इस नीति के बुरी तरह विफल होने की वजह से वहां अकाल छा गया, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई। चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनने के 20 सालों बाद साल 1966 में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर अपनी सत्ता को साबित करने की कोशिश की। माओ को यकीन हो चला था कि चीन की तत्कालीन सरकार देश को क्रांति से उल्टी दिशा की ओर ले जा रही है। माओ ने 20 साल पहले हुई चीनी क्रांति की मूल भावना को दोबारा जिंदा करने और प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए देश के युवाओं का आह्वान किया। माओ का मकसद समाज को बुर्जुआ तत्वों और परंपरागत सोच से मुक्त करना था, लेकिन 1968 की गर्मियों में देश सत्ता की लड़ाई में फंस गया। इस लड़ाई में व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा और उथल पुथल में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग जेल में बंद किए गए, जिन्हें वहां यातनाएं दी गईं। मिन झोउ सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान झोउ 10 साल की थीं और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थीं, क्योंकि उनके माता पिता को लेबर कैंप भेज दिया गया था। बीबीसी से बात करते हुए झोउ ने बताया कि इस अनुभव से वे और मजबूत बनी।
इस सांस्कृतिक क्रांति ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। हालांकि इस क्रांति ने मेरा बचपन छीन लिया, लेकिन मैं जल्दी बड़ी हो गई। मेरा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं एक ऐसे इंसान के रूप में बड़ी हुई जिसकी जिंदगी में उद्देश्य और लचीलापन था।
मिन झोउ बताती हैं कि दूसरों के मुकाबले उनका अनुभव उतना खराब नहीं रहा।
आप अपने बुरे अनुभवों से सीख ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि मौजूदा नेतृत्व इतिहास से सबक लेगा। इस ऐतिहासिक घटना में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मारा नहीं गया, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुभव अलग है। लेकिन मेरे ऐसे दोस्त हैं जिसके परिवार वाले मारे गए, जिनके माता पिता या रिश्तेदारों ने खुदकुशी कर ली, इसलिए उनका अनुभव ज्यादा दर्दनाक है।
चीन के एक युग के विवादास्पद इतिहास को कैसे संभाला जाए, ये सवाल चीन के साम्यवादी शासकों के लिए आज तक चुनौती बना हुआ है। सांस्कृतिक क्रांति के 50 साल पूरे होने के मौके पर भी चीन की मुख्य सरकारी मीडिया ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। इसकी बजाय सरकारी मीडिया ने दक्षिण चीन सागर और अन्य घरेलू समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। अधिकारियों ने 50 साल पूरा करने वाले इस मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए कोई आधिकारिक कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई।
चीन की सांस्कृतिक क्रांति के 50 साल पूरे हुए और अब आपकी चिट्ठियां,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ वो शख्स बैठे हुए हैं जिनकी आवाज आप बहुत कम सुनते हैं, यानी बीबीसी हिंदी के संपादक निधीश त्यागी।
सभी श्रोताओं को निधीश त्यागी का नमस्कार।
तो निधीश जी, आपकी सेवा में बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत सारी ईमेल हमारे श्रोताओं ने भेजी है। मैं एक सिरे से पढ़ देता हूं और आप उनका जवाब दीजिए।
जरूर।
ये पहली ईमेल जो आई है, ये भेजी है हमें हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तम कुमार वर्मा ने। लिखते हैं, कल मेरे एग्जाम्स हैं, फिर भी आज मैं बीबीसी को पत्र लिख रहा हूँ। नमस्कार, भारत में वो सतुल्ला खान की डायरी पेश की गई जो बहुत ही अच्छी लगी। आगे लिखते हैं कि इसमें चाहे भारत हो या पाकिस्तान, लोकतंत्र में व्याप्त समस्याओं पर उन्होंने व्यापक प्रकाश डाला है। इसके अलावा दिव्या आर्य जी की केरल से की गई रिपोर्टें भी अच्छी लगी, ख़ास तौर पर उन्होंने जो आरएसएस कार्यकर्ता सुजीत की निर्मम हत्या से संबंधी रिपोर्ट भेजी थी, वो काफ़ी सराहनीय प्रयास था।
बहुत शुक्रिया उत्तम जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत अपने अनमोल समय में से हमारे रेडियो प्रोग्राम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा अच्छी गई होगी
जी। और ये दूसरी चिट्ठी हमारी है केसिंगा उड़ीसा से, सुरेश अग्रवाल लिखते हैं, बीबीसी हिंदी के कार्यक्रमों में पाकिस्तान से वो सतुल्ला खान देखिए, दोबारा से उनकी तारीफ हो रही है। और वॉशिंगटन डीसी से ब्रजेश उपाध्याय की डायरी का कोई मुकाबला नहीं।
हाँ, मुझे लगता है कि ये तो सुन के हमेशा अच्छा लगता है जब प्रशंसा करते हैं, पर हम लोग और मेरी जो पूरी टीम है वो ये उम्मीद करती है कि हमारी जो है जो खामियां हैं और हमारी जो गलतियां हैं उनकी तरफ भी आप निगाह डालें और हमें बताएं, ताकि हम लोग अपने काम को बेहतर कर सकें।
वैसे हमारे श्रोता बहुत ही निर्मम है, जहां आलोचना की बात होती है तो वो चिट्ठियां आज नहीं हैं, लेकिन अक्सर आलोचनात्मक चिट्ठियां आती रहती हैं जी। और ये एक हमारे श्रोता हैं जमेरिया नेपाल में, वहाँ से लिखते हैं, उनका नाम है गणेश प्रसाद हुजदार। लिखा है, रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत वीर कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की शहादत की दर्द भरी गाथा सुनकर बेहद अफसोस हुआ। दूसरी तरफ फख्र भी महसूस हुआ कि भारत में ऐसे भी वीर और निस्वार्थ सेनानी हैं।
रेहान जी की विवेचना की तो खैर हमेशा ही प्रशंसा ही सुनने को मिलती है
जी। ये योगेश कुमार यादव ने लिखी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से, इन्हें बीबीसी से शिकायत कि आप कभी विकलांग लोगों की समस्याओं को नहीं उठाते, ये इनकी शिकायत है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये शिकायत का कोई आधार है, क्योंकि निधि जी आपको याद होगा विश्व विकलांग दिवस पर हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ही एक छात्र को यहाँ बुलाया था और उन्होंने अपनी बात
उनको बुलाया था जिन्होंने पिछले साल IAS टॉप किया था, उनको भी हमने इस पे काफी ठीक ठाक तरीके से उनको उनके ऊपर कार्यक्रम किए थे।
और मधुसूदन को भी बुलाया था जिनका बेटा स्पेस्टिक है, वो पत्रकार है।
तो वो भी आए थे। ये मत समझें कि हम उसको लेकर संवेदनशील नहीं हैं, और ये बिल्कुल एक ज़रूरी बात भी है समाज के लिए, उसको जिसको हमको जिसका जिक्र हमको बार बार करते रहना चाहिए। पर आपके सुझाव का बहुत शुक्रिया।
और ये ईमेल है राजेंद्र प्रसाद भट्ट की ओर से, भाबू दयाल जयंती अल्मोड़ा उत्तराखंड से लिखते हैं, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में राजनीति विज्ञान का प्रवक्ता हूँ। आगे लिखते हैं कि पौंडिचेरी के भारत में मिलने की तिथि 1964 बताई गई, जो गलत है, ये 1954 है। BBC से गलती की उम्मीद नहीं रहती है, इसलिए इसको दुरुस्त किया जाए, ये इनका कहना है। मैं आपको बता दूं कि ये सलमान रावी ने रिपोर्ट की थी, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या गलती है, तो सलमान ने इसमें मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये इसका स्पष्टीकरण दिया था कि दरअसल 1954 में सिद्धांततः ये मान लिया गया था कि पौंडिचेरी भारत की टेरिटरी में आएगा, लेकिन 1962 में ये एक तरह से कानूनी रूप से हिंदुस्तान का
विलय घोषित हुआ।
जी हाँ, ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। तो ये चिट्ठी
पर एक अच्छी खुशी की बात है कि इतनी बारीकी से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको रेखांकित करते हैं। मेरे ख्याल से इतने ही उसी सजग श्रोता और उसी सजग पाठक के कारण ही मेरे ख्याल से हमारी गुणवत्ता ही बढ़ती है उससे, और हमारा ही जो काम है बेहतर होता है।
हमारे एक एक शब्द पर उनके कान होते हैं और हमारी गलतियों की तरफ तो बहुत ज़्यादा ही उनका ध्यान रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। जलेश्वर तिवारी जी की ये चिट्ठी है जो उन्होंने गोपालगंज बिहार से लिखी है। दो दो पोस्ट कार्ड आए हैं और उन्होंने लिखा है कि इंडिया बोल कार्यक्रम में 3 साल से हम लाइन में खड़े हैं मोबाइल हाथ में लेकर, अब तक हमें प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिला है।
जलेश्वर जी, आपकी तो हस्तलिपि बहुत ही अच्छी है।
हाँ, मैं पोस्ट कार्ड देख रहा हूँ आपका, बहुत ही साफ साफ।
हाँ, और नहीं, एक अलग सी कैलीग्राफी जैसा कुछ है और वो अच्छा है। और इंडिया बोल के लिए मुझे लगता है कि जैसे ही मौका लगेगा बेखल से आपके फोन पर घंटी बजेगी।
हाँ, ये अपना नंबर हमें अगर भेज दें तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए। अब चलते चलते अपने श्रोताओं को मैं डाक का पता बता देता हूँ। BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो श्रोताओं, आपने अपने पत्रों के जवाब सुन लिए, निधीश त्यागी और राजेश जोशी थे। और अब कार्यक्रम में खेल की चर्चा कर लेते हैं। आदेश कुमार गुप्त जी मौजूद हैं। आदेश जी, बताइए फिर कहाँ से शुरू कर रहे हैं।
जी देखिए, इन दिनों चीन में जारी टॉमस और उबेर कप फाइनल्स के मुकाबलों में भारतीय महिला टीम ने उबेर कप में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से मात दी। पहले तो महिला एकल वर्ग में भारत की साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलिया की सुआन युवेंडीचेन को 22-20, 21-14 से मात दी। उसके बाद महिला एकल वर्ग में ही PV सिंधु ने जोएलाई को 21-12, 21-11 से और रुथिवा शिवानी ने तिफानी हो को 21-5, 21-11 से हराया। और इसके बाद जब बारी आई महिला युगल मुकाबलों की तो NC Reddy और PV सिंधु ने भी अपना मुकाबला जीता। उसके अलावा भारत की स्टार युगल जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने भी जीत हासिल की। कल थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम हांगकांग से उबेर कप में भारतीय महिला टीम जर्मनी का सामना करेगी। उधर रियो ओलंपिक में कुश्ती के 74 किलो भार वर्ग मुकाबले में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही अपनी जगह पक्की करने वाले नरसिंह यादव जाय या सुशील कुमार, इस विवाद के बीच खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने साफ साफ कहा कि सरकार इसमें दखल नहीं देगी, इस पर जो भी फैसला करना वो कुश्ती महासंघ करे। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बीजिंग ओलंपिक के कांस्य और लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता सुशील कुमार ट्रायल को लेकर हाईकोर्ट में चले गए हैं। कल इस मामले में सुनवाई होगी। और आज IPL 9 में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना थोड़ी देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले गए। तमिलनाडु में 69.19%, पुडुचेरी में 81.94% और केरल में 71% मतदान की खबर है। मतगणना गुरुवार को होगी, उसी दिन असम और पश्चिम बंगाल के नतीजे भी आएंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि सरकार सूखे से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना के बारे में विचार कर रही है। और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल मिसाइल के परीक्षण से क्षेत्र में शक्ति का संतुलन खराब होगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के संक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। आपसे मुलाकात होनी तय है घटना चक्र कार्यक्रम में। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।